ओम शांति। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 106 प्रश्न है, समीप आत्माओं की मुख्य निशानी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन 14/12/83 की अव्यक्तवाणी से लिया है। तो बाबा ने क्वेश्चन पूछा है कि समीप आत्माओं की मुख्य निशानी क्या होंगी। तो उसमें बाबा ने दो निशानियां बताई है, बाकी हमारे हम मनन चिंतन से कुछ एक निकाली है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कि जो समीप अर्थात क्या है, कि समीप अर्थात जो बाप के संकल्प है, वाणी है और कर्म है, वो हमारे भी हो यानी उसके समान हो, यानी ये इनको अपन समीप आत्माएं कहेंगे। ये समीप आत्माएं उनकी निशानी, जो बाबा की विशेषताएं है वो विशेषताएं हमारी हो, जो बाबा सर्व गुणों के सागर है, जैसे बाप सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता के सागर है, वो भी हमारे अंदर धारणा हो उसकी, तो हम समीप बन जाएंगे। जैसे बाबा विश्व कल्याणी है, हर एक आत्मा का कल्याण होना चाहिए बाबा की भावना रहती है, वो भावना हमारे भी हो तो हम समीप बन सकते हैं। और जैसे बाबा हर एक आत्मा के गुण देखते, जैसे किसी के अंदर 99% अवगुण होंगे और एक भी गुण होगा तो बाबा क्या देखेंगे, उनके गुण ही देखेंगे, अवगुण कभी देखेंगे, एक गुण की विशेषता देखेंगे। वैसे हमें भी कैसा भी आत्मा हो लेकिन हर एक के हमें गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है, तब हम समीप बन सकते हैं। और जो बाबा में सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियों का बाबा सागर है, उन शक्तियों को भी यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम बाप के समीप बन सकते। तो इस प्रकार इन सब बातों को हम यदि अपने जीवन में हम धारण करेंगे, बाप समान बनेंगे वो इसमें बातों में, तो हम बाप के समीप बन सकते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चे पर ही बाबा क्या करते हैं, फिदा जाते हैं, अपने नयनों में रखते हैं। और लाड प्यार करते हैं ऐसे बच्चे को, और बाबा और क्या करते हैं, पुचकारते ऐसे बच्चे को, और महिमा करते हैं, गीत गाते ऐसे बच्चे को। और ये इस जो समीप बच्चे हैं वो बाप दादा के दिल तक तो नसीन रहते, बाबा के दिल पर बैठते वो। तो ऐसे बच्चों को ही बाबा क्या करते हर समय मदद देती है, यानी मदद के लिए बाबा तैयार रहते हैं, और ऐसे बच्चों को बाबा से मदद मिलती है। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, कोई भक्त है यानी निरंतर रात दिन भगवान को याद करता है, उनके श्रीमत पर चलते हैं, तो भगवान भी क्या करता है, उनको मदद करता है। जब हाँ उनके उसको दर्शन देते हैं, और कोई कठिन परिस्थिति है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मदद करता है भगवान भी उनको। तो इस पर मुझे कहानी याद आ रही है कि एक राजा था, ये कहानी तो सबको पता है मगर अभी वो प्रसंग अनुसार अभी हम सुनाएंगे कि वो राजा बहुत भगवान की भक्ति करता था, यानी दिन रात भगवान की भक्ति में मगन रहता था, निरंतर उसको याद करता था, और याद करे बगैर वो पानी या भोजन भी नहीं खाता था, इसका भगवान के ऊपर उसका निश्चय था। और उनके साथ साथ वो प्रजा पर भी ये करता था, उसको भी सुख देता था, यानी प्रजा को भी पुत्रवत प्रेम करता था, तो उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी। तो एक दिन ऐसा ही वो भगवान की याद में ध्यान में बैठा था, तो भगवान ने उसको दर्शन दिया और उसको बोला कि राजन मैं आप पर प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, आपको क्या चाहिए। तो फिर राजा ने बोला कि मेरे पास तो आपकी कृपा से सब कुछ है, और मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, राज्य में सब सुखी है, और मैं भी स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठाक हूँ, यानी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास। लेकिन भगवान और उसको बोल रहे थे कुछ तो मांगो बोले आप, क्योंकि मैं आप अनन्य भक्त है मेरे वाले, और मैं आप पर फिदा हुआ, बोले आपको क्या चाहिए। फिर उसने बोला यदि देना ही चाहती है तो जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे सब मेरे प्रजा को भी आप दर्शन दीजिए। तो फिर वो बोला ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर जो योग्यता है उसी कारण मैंने आपको दर्शन दिया, लेकिन प्रजा में वो है ही नहीं। लेकिन वो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे वो राजा वो भगवान को, तो फिर भक्तों के ऊपर भगवान भी क्या होते झुक जाते हैं ना उसके आगे। फिर वो तैयार हो गए और उसने बोला कि ठीक है कल बोले उस पहाड़ी के पास मैं सबको दर्शन दूंगा, सब प्रजा को आप लेके आना। तो फिर राजा को बहुत खुशी हो गई कि भगवान मेरे प्रजा को भी दर्शन देंगे। तो फिर उसने दौंडी पिटवाई वहाँ पर, सभी प्रजाजनों को बताया कि कल सभी को भगवान दर्शन देने वाले हैं, तो सभी उस पहाड़ी के पास चलना है सवेरे सबको। तो प्रजा को भी उमंग उत्साह आ गया, बहुत खुश हो गए कि भगवान हमें दर्शन देंगे। तो उसी हिसाब से बिल्कुल तैयार हो गए और सवेरे सभी निकले क्योंकि उनका जो समय है उसी अनुसार निकले हो। तो फिर पहाड़े की तरफ जा रहे थे, तो क्या हुआ जाते जाते जब वो उधर जा रहे थे तो रास्ते से पहाड़े के नजदीक कि उसके पहले ही उनको एक ऐसे तांबे के सिक्के का ऐसा पर्वत दिखा छोटा सा। तो उनमें से जो कुछ प्रजा लोग थे उनके मन में लोभ निर्माण हो गया और वो सिक्के सोने अपने चांद तांबे के लेने के लिए दौड़े। तो फिर राजा ने बोला अरे उसकी तरफ नहीं दौड़ो बोले, क्योंकि सभी को भगवान दर्शन दे रहे हैं और वो उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो आप तांबे के सिक्के के पीछे, वो तो अपन बाद में ही ले सकते हैं, मगर उनमें से कुछ प्रजा को लगा कि भगवान का दर्शन बाद में कर सकते लेकिन सिक्के थोड़े मिलेंगे अपन को। तो वो अपनी गठड़ी बांध करके वो घर की तरफ निकल पड़े। बाद में थोड़ी आधे लोग बचे, फिर आधे लोगों के साथ भगवान आगे बढ़ रहे, सॉरी राजा आगे बढ़ रहा। तो बाद में क्या हुआ थोड़े समय अंतर चले तो बाद में उनको चांदी के वो छोटी सी पहाड़ी दिखी। तो बाद में उनमें से जो कुछ लोग थे उनके मन में लालच जागृत हो गई और वो भी दौड़े वो चांदी के सिक्के इकट्ठा करने के लिए। तो उस राजा ने बोला, मगर उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह गठड़ी बांधकर वो अपने अपने घर की तरफ निकल गई। बाद में थोड़ी लोग बचे तो वो कुछ उनकी रानी थी और मंत्री थी और थोड़ी भी प्रजा थी, तो उनके साथ भी राजा आगे बढ़ा। तो थोड़े अंतर चलने के बाद उन्हें सोने की यानी स्वर्णमय ऐसी छोटा सा पाट दिखा। तो उनमें से जो लोग उसके अंदर और लालच निर्माण होगी और वो भी दौड़े वो इकट्ठा करने के लिए। राजा ने बोला मगर किसी का ध्यान नहीं उनके तरफ, तो वो भी अपनी गठड़ी बांध करके घर के तरफ निकल गए। बाद में कौन बचे, केवल राजा और रानी दोनों ही बचे। तो राजा ने बोला देखो ये लोग कितने लोभी है, लालची है कि भगवान से भी ज्यादा महत्व अविनाशी धन को दे रहे है। तो फिर रानी ने भी उसको सहमत दिया, हाँ सही बात है बोले, क्योंकि लोग तो बहुत लालची है। फिर चलो बोले अपन दोनों भी अभी भगवान दर्शन देंगे चलो। फिर थोड़े अंतर चले, फिर उसने क्या देखा, हीरे चमचमते हुए हीरे दिखाई दिए। तो फिर रानी के मन में लालच पैदा होगी तो वो भी दौड़ी वो हीरे लेने के लिए। तो फिर राजा ने बोला कि अपने पास तो बहुत हीरे, इस हीरे के पीछे क्यों पड़ रहे, पहले भगवान का दर्शन करेंगे। फिर लेकिन रानी ने भी उनकी बात नहीं मानी और वो इतनी मगन हो गई वो हीरे इकट्ठा करने के लिए कि जो उनके साड़ी का पल्लू था उसमें उन्हें हीरे बांध ली। वो वस्त्र उनके शरीर से अलग हो गए लेकिन उसको भान नहीं। वो दृश्य देख करके राजा को बहुत ग्लानि हो गई कि देखो रानी भी कितनी लालची कि इतना सब कुछ होते हुए भी वो उस हीरे के पीछे यानी इतनी दीवानी हो गई। तो लास्ट में राजा को बहुत ग्लानि हो गई और वो ग्लानि से वहीं पर भी बैठा रहा, लोग देखो कितने भगवान से भी ज्यादा ये स्थूल धन को महत्व देती है। तो उतने में भगवान उनके पास आ गए और मुस्कुराते हुए बोले उनको कि कहा गई बोले आपकी प्रजा, मैं तो कब से दर्शन के लिए तैयार हूं बोले। तो राजा ने सारी बात बता दिया उनको। तो फिर भगवान ने बोला का देखो मैंने पहले आपको बताया था बोले कि आपके अंदर जो योग्यता है वो प्रजा में नहीं है, इसलिए मैं ऐसे सभी को दर्शन दे नहीं सकता, इसलिए आप पात्र थे इसलिए आपको मैं दर्शन दिया। फिर वो बात राजा के समझ में आ गई। तो वैसे भगवान भी जो समीप बच्चे, बाबा भी क्या करते जी, उनके समीप बच्चे जो उनको निरंतर याद करते हैं, उनके श्रीमत पर चलते हैं, जो पवित्रता में याकुरेट रहते हैं, वो गुणों की धारणा करते है, ऐसे बच्चे भी क्या हो सकते हैं, बाप समान बनते हैं। और बाबा ऐसे बच्चे को भी यानी लाडले लाड़ प्यार करता है और विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको अपने वर्षे की अधिकारी बनाती है। तो ये समान बच्चे वही समीप बन सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये समीप बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है, जो क्वेश्चन में बताया है। और बाबा ने वैसे दो निशानियां बताई है। तो उसमें पहली निशानी है कि संकल्प बोल और कर्म में बाप समान होंगे, कि जिनके संकल्प बोल कर्म जैसे बाबा के वैसे होंगे वही बच्चे क्या हो सकते हैं, बाप के समीप बन सकते हैं। तो जैसे संकल्प देखो कितने शक्तिशाली होती, उसमें कितनी शक्ति रहती है कि जो भी हम जैसे बाबा के, इसलिए संकल्प के बारे में कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा क्या क्या सृष्टि की रचना की, यानी बाबा ये भी संकल्प कितने अच्छे निकलते, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना वाले संकल्प रखते। बाबा भी हर एक आत्मा की क्या गुण देखते अवगुण नहीं देखते, यानी इतने शक्तिशाली संकल्प है बाबा के। तो वैसे हमें भी वही अपने संकल्प बनानी है, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं वैसे हमारे मुख से बोल निकलती है और वैसे हम क्या करते हैं कर्म करते हैं। तो जो सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो इस पर संकल्प में कितनी शक्ति रहती है, इस पर एक बात मुझे याद आ रही है कि जो हम सोचते वैसे ही होता है। तो एक व्यक्ति था उनको फांसी की सजा हुई थी कि दो दिन के बाद उसको फांसी पर चढ़ाने वाले थे। तो कुछ लोगों को कुछ रिसर्च करना था क्योंकि उसको तो वैसे मौत देनी है, तो फिर फांसी के बदले हम दूसरे तरह दूसरे हिसाब से इनको मौत देंगे बोले, कुछ हमें रिसर्च करना है। तो जेलर ने बोला ठीक है आप करो रिसर्च। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि जिस दिन उनको फांसी पर चढ़ाने वाले थे उस व्यक्ति को, तो उसको उस दिन एक उसके जो कपड़ा डालते हैं ना उसके सिर के ऊपर वैसा उसने कपड़ा डाला और उसको एक बंद कमरे में ले गए, अंधेरा कमरा था वो, और उसको संकल्प दिया गया कि हम आपको इस कमरे में बंद कर रहे हैं और तो थोड़े देर के बाद हम एक विषैली जो सांप है उसको छोड़ देंगे, वो आपको काटेगा और उससे आपकी मौत हो जाएगी। तो उसको तो वैसा मरना है था, बोले कुछ भी करो क्योंकि मुझे तो मारेंगे भी आप लोग, तो उसने स्वीकार कर दिया। बाद में थोड़े समय के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति ने वो उसको एक पिन छुपा दिया उसके पाव को, तो उसको लगा कि अभी मेरे को सांप ने काट दिया और उसका संकल्प चला। और बाद में क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसके बॉडी को पोस्टमार्टम हुआ, उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो बाद में ऐसा देखा गया कि उसके ब्लड में यानी विष यानी फैल गया था, विष यानी पाया गया। तो ये देखो तो उनको तो वैसा क्या है, सांप ने तो काटा नहीं था लेकिन उसके बॉडी में कैसा विष पैदा हो गया, क्योंकि उन लोगों ने जब उसको संकल्प दिया था कि आपको सांप ने सांप छोड़ेंगे और वो सांप से आप काटेंगे आपको, उससे आपकी मौत हो जाएंगी, तो फिर उसने वो स्वीकार किया। वैसे ही उसने संकल्प चलते उसके बॉडी में वैसे केमिकल्स तैयार हो गए ब्लड में और उसी कारण उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार संकल्प में देखो कितनी शक्ति रहती है, जो हम संकल्प करते वैसे ही बन जाती है। इसलिए हमें भी क्या करना है, हर एक आत्मा के प्रति अच्छी भावना रखनी है कि उसका कल्याण हो जाए। जैसे किसी आत्मा का कल्याण हो जाए इस प्रकार से हम संकल्प चलाते उसका कल्याण हो जाता है और वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यदि हम भी किसी के प्रति बुरे संकल्प चलाते हैं तो वो क्या होते, वाइब्रेशन उनके वहां तक पहुंच जाते हैं और वो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह संकल्प हो गया। तो बाप यानी जो बाप के संकल्प है वो हमारे संकल्प रहेंगे बनेंगे तो हम भी बाप समान समय बन जाएंगे। दूसरी बात है बोल, जैसे बाबा के बोल है वैसे समीप आत्माओं के बोल रहते हैं, तो वैसे भी बोल हमें बोलना चाहिए। जैसे बाबा के बोल हम क्या बोलते हैं, महावाक्य, जैसे बाबा की वाणी हम सुनते हैं तो उसको महावाक्य बोलते हैं हम। तो जो भी उस महावाक्य को सुनते हैं तो क्या होता है, उसका जीवन महान बन जाता है और उसके जीवन में जो भी बुराई आए तो अच्छी बन जाती है, जो परेशानी आए दुख दर्द है वह समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार बोल, तो हमें बोल भी कैसे अच्छे बोल बोलने हैं, मीठे बोल बोलने, दूसरे को सुख देने वाले बोल बोलने। जैसे ब्रह्मा बाबा के संपर्क में जो भी आत्माएं आते थे तो वो कैसे बोल बोलते थे, इतने बोल बोलते थे तो वो जो परेशान आत्माएं रहती थी तो उनकी परेशानी दूर हो जाती थी। कोई ऐसे क्वेश्चन लेकर आते थे ब्रह्मा बाबा के पास यानी उल्टे पुलटे से क्वेश्चन, तो जब ब्रह्मा बाबा उसको ऐसे मधुर वाणी से बोल बोलते थे तो वो क्या करते, उसके क्वेश्चन का समाधान हो जाता था। कोई निगेटिव भावना से आते थे बाबा के पास तो उसके बोल सुनकर क्या होता था, उसके निगेटिव भाव में पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता था। ऐसे बोल भी हमें कैसे, जैसे बाबा के बोल है वैसे हमें भी अपने बोल बनानी है, तो दूसरे जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उसको भी सुख मिलेगा। इसलिए हमारे मुख से सदैव यानी अच्छे बोल निकलने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि आपके मुख से क्या निकले, फूल निकलने चाहिए, रतन निकलने चाहिए, कांटे नहीं निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तो ऐसी हमें मधुर वाणी बनानी है अपने वाली, तब हम क्या बनेंगे, बाप समय बन सकते हैं। और तीसरा कर्म, जैसे कर्म में जैसे बाप के कर्म थे वैसे कर्म हमें करना है। तो इस प्रकार संकल्प बोल और कर्म में हम यदि बाप समान बनेंगे तो बाप के समय बन सकते हैं। ये पहली निशानी हो गई। दूसरी है अधिकारीपन, यानी बाबा ने बताया कि अधिकारीपन ये समीप बच्चे है वो अधिकारी बनेंगे। यानी जैसे बाबा ने कहा है कि जो समीप वाले बच्चे वो अधिकारी रहते हैं यानी देने वाले रहते हैं, ये बाबा उसको अधिकार से वर्षा देती है वो दूसरे को देंगे, और ये दूर रहने वाले बच्चे वो अंचली मांगने वाले होंगे, वो मांगते रहेंगे और समीप वाले बच्चे अंचली देने वाले होंगे। जैसे बाबा कैसे दाता है तो वैसे हमें भी क्या करना है, दाता बनना है। जो बाबा के अंदर गुण विशेषता जो शक्तियां है हमें वो लेनी है और लेकर क्या करना है, दूसरे को देना है। जो अशांत आत्मा है उन्हें शांति का दान देना है, दान दे के उनकी क्या करना है, अशांति दूर करनी है। जो दुखी आत्मा है उन्हें सुख देना है, जो तड़प रही है उसकी तड़पन दूर करनी, जो भटक रहे भगवान का परिचय नहीं उनको और वो भटक रही है, ऐसी आत्मा को क्या करना है हमें, उसको बाबा का संदेश देकर उसकी भटकन दूर करनी है। तो इस प्रकार अधिकारीपन यानी जो भी बाबा ने हमें अधिकार दिया वर्षे में, वो दूसरे को देना है दान में। तो इस प्रकार जब हम अपने अंदर धारण करेंगे तो हम बाप समी बन सकते हैं। अभी तीसरी बात है निशानी, यानी श्रीमत। जो बाबा ने श्रीमत दी है, जो समीप आत्माएं रहते वो बाबा के याकुरेर श्रीमत पर चलेंगे। जैसे बाबा ने श्रीमत दी है, वो श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे या श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेंगे। जो बाबा के श्रीमत है उसी अनुसार ही वो चलेंगे। जैसे बाबा ने साकार मुरली में कहा है ना कि बाबा हर एक बच्चों को एक मत देते है, उसको अद्वैत मत कहती है। वो अद्वैत मत अपने जीवन में धारण करेंगे, उस अनुसार चलेंगे तो आप क्या बनेंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे, यानी पवित्र बन जाएंगे और पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे बोलते। तो ऐसा बाबा हर एक आत्मा को अच्छी मत देते हैं। तो इस प्रकार हम यदि श्रीमत पर चलेंगे, जैसे बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी है, जैसे योगी बनो पवित्र बनो, ये बाबा के श्रीमत है। तो हम भी बाबा के निरंतर याद में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर प्योरिटी आ जाएंगी और पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो श्रीमत है समीप वाली आत्मा श्रीमत का याकुरेट पालन करेगी और श्रीमत अनुसार चलेंगे। कितनी निशानी होगी, तीसरी। अभी चौथी निशानी है वो पुरुषार्थ में याकुरेट रहेंगे। ये समीप बच्चे है वो पुरुषार्थ में क्या करेंगे, याकुरेट रहेंगे, वो अलबेलापन उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे अमृत वेला है, मुरली क्लास है या नुमा श्याम का योग है, ये कभी मिस नहीं करेंगे, वो उसमें याकुरेट रहेंगे। जैसे मुरली भी सुनते समय किस भावना से सुनेंगे, ये मुरली स्वयं भगवान हमें सुना रही है, भगवान मुरली पढ़ाने के लिए परम धाम से हमारे पास आ रहे है और वो हमें मुरली सुनाते है। तो इस भावना से वो मुरली सुनेंगे। और जो भी बहन बहन अथवा भाई मुरली सुनाती है तो उस समय उसके यही भाव रहेगा कि इनके द्वारे बाबा हमको मुरली सुना रही है, और उसी स्मृति के साथ वो मुरली सुनेंगे। और मुरली सुनते समय क्या करेंगे कि मुरली में अच्छे अच्छे पॉइंट आते उसकी नोट करेंगे। कहाँ पर करेंगे नोट, यानी अपने दिल की डायरी में करेंगे। और जो भी टॉपिक भी आती है अच्छी अच्छी, वो भी टॉपिक अपने पास लिख के रखेंगे दिल के डायरी में। और बाद में सारे दिन में जब धंधा धुरी के कार्य करती है तो उस समय क्या करेंगे, जब भी समय मिलता है तो उस समय में वो मनन चिंतन करेंगे और जो भी उनके संबंध संपर्क में आती है उनको क्या सुनाएंगे। जैसे बाबा के ज्ञानी बच्चे आ गए तो उनको ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन पात्र देखकर भी सुनाना, नहीं तो सभी को हजम नहीं होता है, तो इसलिए पात्रता देखकर सुनाना चाहिए। तो वो वैसे सुनाएंगे। और ये भी नान पीकेज हमें जो बाबा के ज्ञान में नहीं, ऐसे को बाबा का संदेश देंगे। तो इस प्रकार जो भी उनके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं है उनको ज्ञान की रूह ध्यान करेंगे, ज्ञानी सुनाते रहेंगे। तो इस प्रकार वो चिंतन करेंगे आपका मूर्ति का। दूसरी अमृत वेला, तो अमृत मेला भी कभी मिस नहीं होंगी उनकी, कि समय पर उठ करके बाबा को याद करेंगे और बाबा से शक्तियां लेकर अन्य आत्माओं को देंगे। जैसे बाबा अभी अमृत वेले बाबा का बोलते सर्व खजाने का भंडार खुला रहता है, क्योंकि बाबा भोला भंडारी है, वो खजाना खुला रखता है। तो जो भी हमें खजाना लेना है वो ले सकते, किसी को मना नहीं देती उस समय। तो लेकर के हम दूसरी आत्मा को दे सकते। बाबा ये कहते हैं ना कि जो दुनिया के लोग है दुखी है अशांत है वो चिल्ला रहे है, और तो बाबा बोलते उनकी पुकार या चिल्लाना आपको यानी सुनाई नहीं देती क्या बोलते, तो हमें वो सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि अमृत वेले के समय हमको उनकी सुनकर उनको देना। जैसे ब्रह्मा बाबा वो क्या करते थे, नहीं लोग सोए होते हैं मगर हम उसको वाइब्रेशन दे सकते हैं ना उस समय। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या रात्र भर जा करके उन लोगों को सकार देते थे बोलते, क्योंकि बाबा को उनकी आवाज सुनाई देती थी। तो इस प्रकार हमें भी उनको देना है बाबा से लेकर के, हमारे पास तो ना ये, तो बाबा से लेकर के हम उनको दे सकते हैं, तो दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं अमृत वेले। बाद में नुमा श्याम का योग वो भी याकुरेट करेंगे समीप वाले आत्मा, वो सो ही मिस नहीं होगा, मगर वो नुमा श्याम का योग है वो सारे दिन की दिनचर्या पर आधारित रहेगा। इसे सारे दिन में हम बाबा की याद में रहेंगे, परचिंतन परदर्शन से मुक्त रहेंगे। तो बाबा की हमें अमृत नुमा श्याम का योग में बैठेंगे तो हमारे मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगी और बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएंगे हमारा। तो इस प्रकार नुमा श्याम का हम योग भी कर सकते। उस दिन अपने सुशील भाई जी ने बताया था कि जैसे हम योग में बैठते हैं तो अपन हर एक स्थिति चेक कर सकते हैं कि किसको किस प्रकार का योग लगा है, क्योंकि जब भी हम समझो योग में बैठते हैं, जब हमारे मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो क्या होता है, उठने का दिल नहीं होता, होता है का नहीं होता है ना ऐसी, और उठने के बाद किसी के साथ बात करने की ऐसी इच्छा नहीं होती। मगर कहीं कि अपन भाई लोग देखते हैं कि उठते बराबर यानी बात करेंगे, किसी को छेड़छाड़ करेंगे, इस प्रकार के ये करते हो, तो उससे पता चलता है कि इनका योग बराबर नहीं लगा था, बाबा के साथ कनेक्शन ठीक नहीं था, इसलिए वो उनकी स्थिति वैसी बनी। नहीं तो हमारे मन बुद्धि एक्यूरेट रही, बाबा के साथ जुड़ी, तो हम भी ऐसे बोलने की इच्छा नहीं होती है। तो ये विशेष मेरे को पॉइंट उस दिन सुशील भाई जी ने बताया तो टचिंग हुआ, तो सही बात है वाली, हम भी उसका अनुभव कई बार करते हैं। तो ऐसे तो इस प्रकार जो समीप वाले बच्चे हैं तो वो अमृत वेला, मुरली क्लास और नुमा श्याम का योग कभी मिस नहीं होगा, यानी एक्यूरेट रहेंगे, वो अलबेले नहीं बनेंगे। अगली निशानी है निरंतर बाबा के याद में रहेंगे, क्योंकि बाबा ही बोलते हैं कि वो निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, जितने बाबा के याद में रहेंगे उतने विकर्म विनाश हो जाती है। तो वो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते या सोते जागते बाबा के याद में रहेंगे, इतने निरंतर एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस प्रकार की उनकी स्थिति रहेंगी। और बाबा ही कहते हैं ना, जो निरंतर मेरी याद करते हैं तो उसको बाबा भी मदद करते हैं। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना कि याद के फांसी पे लटके रहो, यानी हाँ इसकी ये करते, जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद से क्या होता है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमको कशिश मिलती है, और क्या होता है जी, हाँ करंट शक्ति मिलती है। बाबा को हम याद करेंगे तो उतनी हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, और हाँ आयु बढ़ती याद से, हाँ माया से सेफ रहती है, हाँ विघ्न प्रूफ बनते हैं, जो भी परिस्थिति है विघ्न आए तो बाबा के याद से विघ्न समाप्त हो जाते, हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं, वो मंग उत्साह आ जाते हैं बाबा के याद से। कोई भी सेवा करते तो बाबा के याद में सेवा करो तो वो सेवा में हमें सफलता मिलती है, व्यर्थ से मुक्त होते, क्योंकि बाबा के याद में रहेंगे हम तो परचिंतन परदर्शन से हमारी बुद्धि से अलग हो जाएंगे, तो हम उससे भी मुक्त हो सकते हैं, हाँ वायुमंडल भी शक्तिशाली हो सकते हैं बाबा के याद से। और राम भाई जी, हाँ भूख भूख, यदि बाबा के याद में रहेंगे तो भूख भी कम हो जाती है, हाँ बाबा बोलते थकान नहीं थी, बाबा के याद में दिल्ली तक भी पैदल चलेंगे तो भी थकान महसूस नहीं होंगे बोलते, यानी इतनी याद से शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार हम बाबा के याद में रहेंगे तो बाप के समीप रतन बन सकते हैं। और अगला है कितने हो गए, निरंतर बाबा के याद में, और निरंतर निश्चय बुद्धि, यानी जो समीप वाले आत्मा ही है वो निश्चय बुद्धि रहेंगे, क्योंकि उसके निश्चय में यानी कभी संशय नहीं आएगा, जैसे स्वयं के प्रति निश्चय, बाप के प्रति निश्चय और ब्राह्मण परिवार के प्रति उनका निश्चय रहेगा। इसलिए बाहुल जी निश्चय यानी निश्चय का फाउंडेशन क्या है, यानी समस्या है यानी परिस्थिति, जैसे 2 तारीख के साकारवाणी में बाबा ने वरदान में बताया है ना, जो परिस्थिति आती, परिस्थिति क्या समझो, हाँ गुड लक समझो, क्योंकि परिस्थिति अनुसार हमारा निश्चय अपन ये कर सकते हैं, निश्चय की परीक्षा होती है, जैसा परिस्थिति अच्छी है समझो तो हमारा बाबा पर निश्चय भी हो जाता है, अच्छे प्रकार हम पुरुषार्थ करते हैं, यानी हम कहते भी कि बाबा हमें मदद कर रहे, यानी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल है यानी कोई समस्या आ रही, विघ्न आ रहे समझो, कोई ज्यादा समय तक बीमारी चल रही है, तो उस समय क्या होता है, निश्चय में संशय पैदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऐसी बीमारी आती है कि बहुत समय तक चलती है, तो बीमारी में कहते हैं ना कि बड़े बड़े महारथी भी हलचल में आ जाती है, तो ऐसे समय पर यानी जो निश्चय है निश्चय में संशय में परिवर्तित हो जाता। ऐसा एक भाई था कि मेरे को अनुभव याद आ रहा उनका, तो वो बहुत निश्चय बुद्धि था, क्योंकि वो एक्यूरेट बाबा को याद करता था, तन मन धन से सेवा भी करता था यज्ञ में, और वो अच्छा क्लासन ऑफिसर था। जब रिटायरमेंट हो गया तो वो इतना यानी देह का कोई भान नहीं था, यानी कोई ऐसा अभिमान नहीं था आपका पद पोजिशन का उसका, तो जो भी बहने उनको सेवा बताती थी तो वो झाड़ू पोछे का भी सेवा करता था, यानी जितना भगवान के प्रति उनकी सुबह अच्छी भावना थी यज्ञ के प्रति। और कभी मधुबन में आता था तो यहाँ पर भी एकदम सच्ची दिल से सेवा करता था, और उधर भी प्रदर्शनी की सेवा भी करता था, गांव गांव में संदेश भी देता था, मगर जितना और तन मन धन से सेवा भी करता था यज्ञ में। तो वो भाई को एक ऐसी बीमारी हो गई समझो कि बहुत समय तक बीमारी चली, और वो कैंसर की बीमारी हुई थी उनको। और बाद में डॉक्टर ने उसको बता दिया कि जवाब दे दिया कि इसका कोई भरोसा नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिर हम उधर रहते थे उस समय, उस भाई को मिलने के लिए गए थे, तो फिर वो हमने बताया उनको कि बाबा को याद करो, जो भी आप पर परिस्थिति आई विघ्न आए बाबा मदद करेगा। लेकिन उस समय वो चिढ़ रहा था कि बोले मैंने इतनी बाबा के यज्ञ में सेवा की, बोले तन मन धन से, कभी मैंने पुरुषार्थ में मेरी कमी नहीं थी बोले, मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं की बोले, मगर ऐसी परिस्थिति क्यों बाबा ने लाए बोले मेरे ऊपर, और ऐसी बीमारी क्यों दी बोले मेरे को, और बाबा ने मदद भी नहीं की बोले। तो देखो यानी इतना निश्चय बुद्धि बच्चा, मगर बीमारी के कारण क्या हो गया, उनके अंदर संशय पैदा हो गया, और लास्ट में उनकी उनने शरीर छोड़ दिया कुछ दिन के बाद। तो देखो कि उनकी लास्ट बाबा बोलते अंतमति से गति, क्योंकि अंतिम समय में हमारी जो ये रहा वैसा ही होता है ना, यानी तो उनकी अंतिम समय बाबा पर निश्चय नहीं था, उसका संशय आ गया था, तो उस प्रकार की उनकी गति हो गई होंगी। तो इस प्रकार हमें भी यानी परिस्थिति अनुसार निश्चय होता है, इसलिए बाबा ने वो वरदान में आगे अंगद का मिसाल दिया है कि अंग जैसे निश्चय बुद्धि बनो, जैसा अंगद का राम पर कितना भरोसा था, प्रभु रामचंद्र बहुत निश्चय था कि एक बल एक भरोसे। तो जब उसका जब प्रभु रामचंद्र ने उसको शांति दूत बन के भेजा था रावण के पास, तो वो गया था और क्या क्या उसने यानी रावण को बोला कि राम सर्वशक्तिवान है, तो प्रभु रामचंद्र से साथ आप वैर नहीं करो, उसके शरण में चले जाओ। लेकिन और भी क्रोधित हो गया, तो फिर उसने बताया कि अपना पाव रखा कि राम प्रभु रामचंद्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि मेरा पाव आप उठा देंगे तो सीता आपकी हो जाएंगी, मानो यदि पाइप उठा देता वो तो क्या हो जाता। लेकिन उनका निश्चय था भगवान के प्रति कि भगवान मेरे को मदद करेगा, इस पाव में भगवान की शक्ति है, और वो यानी निश्चय के साथ करता था। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कोई भी बात आप निश्चय के साथ करो तो समस्या परिस्थिति भी क्या करेंगे, आपके सामने नमस्कार करेंगी, और शुरू शुरू में आएंगी परिस्थिति विघ्न रूप के इसमें आएंगी, लेकिन लास्ट में क्या आपकी दासी बन जाएंगी बोलते। तो इस प्रकार है निश्चय, इसलिए बाबा ही कहते हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्ची है उनको क्या विजय निश्चित होता है, और जो संशय बुद्धि रहती है वो पराजित हो जाती है। इसलिए जो समीप वाली आत्मा है वो क्या करेंगी, उसका निश्चय रहेगा बाप के प्रति। और अगला है चारों सब्जेक्ट में एक्यूरेट रहेंगे वो, जैसे चार सब्जेक्ट हमारे विद्यालय के ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो वो समीप वाले बच्चे उसमें एक्यूरेट रहेंगे। जैसे ज्ञान के बारे में बाबा ने बताया है कि जो नॉलेज फुल है, कि नॉलेज फुल वही है कि जिनके हर कर्म क्या श्रेष्ठ और सफलता होती है, क्योंकि नॉलेज के आधार से जो भी कर्म करते हैं तो उसमें उन्हें सफलता मिलती है बोलते। तो ये नॉलेज के बारे में बताया है, तो बाबा ने नॉलेज के भी बारे में बताया कि नॉलेज क्या है, अभी वो सोर्स ऑफ इनकम है, मगर जो नॉलेज एक बीज है। बाबा ने अभी रिकॉर्डिंग जो बुरली चली शांति में उसमें बोला है ना कि नॉलेज बीज है, और स्नेह नॉलेज के साथ अपन को स्नेह भी चाहिए, दिल का स्नेह चाहिए, तो स्नेह पानी है और नॉलेज बीज है। तो जो भी हम किसको ज्ञान भी देती है तो स्नेह युक्त होके ज्ञान दो, जैसे मम्मा भी क्या करती थी, ज्ञान को अपने में धारण करती थी और स्नेह हो के स्नेहयुक्त भाव से दूसरे को सुनाती थी, तो जो सुनने वाले लोग भी है एकदम उनके पाँव पर गिर जाते थे और उनको मम्मा द्वारा क्या साक्षात्कार हो जाता था, ये कोई महान देवी है बा या जगदम्बा है बा, इस प्रकार के। तो ज्ञान के साथ हमें स्नेहयुक्त ज्ञान सुनाना है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और जो निगेटिव भावना से भी कई लोग हमारा ज्ञान सुनेंगे उसकी भी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये ज्ञान, बाद में योग भी, यानी योग में भी एक्यूरेट रहेंगे और धारणा भी करेंगे वो, और सेवा में भी, जैसे सेवा भी करते समय यानी दिल से सेवा करेंगे कि मैं निमित्त हूँ, यानी बाबा की सेवा है, यानी मैंपन से मुक्त रहेंगे, और उसके अंदर निर्मानता आ जाएंगी, यानी मैं निमित्त हूँ। तो जिनके अंदर वो निमित्त भाव से सेवा करता है तो नम्रता का भी गुण उसके अंदर आ जाएगा, और जो नम्रता का गुण जिसके अंदर रहता है तो उनको क्या करते हैं, सभी लोग नमन करते हैं, और नमन करने के कारण सभी का उनको सहयोग मिल जाता है, और जो भी सेवा करते हैं उस सेवा में उनको सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार जो समीप बच्चे हैं वो चारों सब्जेक्ट में पांचवी दानर रहेंगे, और अगला है वो सम्मान में रहेंगे और सबको सम्मान देंगे। अभी सम्मान के ऊपर तो बहुत बाबा ने उस दिन मुरली चलाया और क्लास भी हो गया है, तो उस पर उतना कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो सम्मानदारी बच्चे है वो दूसरे को क्या देगा, सम्मान देगा। हाँ, और अभिमान में नहीं, अभिमान नहीं रहेगा। और जो सम्मान अपन दूसरे को देते तो रिटर्न में हमें मिलता है, जैसे किसी को हम सुख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न में सुख मिलेंगे। यदि किसी को दुख देंगे तो रिटर्न में दुख मिलेंगे। इसलिए बाबा ही कहते हैं कि इसको दुख देंगे तो दुखी होकर वो मरेंगे। इसलिए जो हम दूसरे को देते वही पाते हैं। इसलिए बाबा ने उस दिन बताया रिगार्डिंग मुरली में कि आप यज्ञ अभी दूसरे को सम्मान देते तो सारे कल्प में आपको सम्मान मिलता है। बोले जैसा आधा कल्प सत्य त्रेता युग में क्या मिलता है, हमें राज्य अधिकारी के रूप में सम्मान मिलता है, और द्वापर युग के बाद भक्तों द्वारा हमें सम्मान मिलता है। तो इस प्रकार है वो सम्मान में रहेंगे और सबको सम्मान देंगे। जी हाँ, सीट पर सेट रहेंगे। और अगला है यानी फरिश्ते बन की स्थिति रहेंगी समीप वाले बच्चों की। जैसे फरिश्ते के बारे में बोलते हैं कि वो नष्ट मुआ रहते हैं, क्योंकि उनका किसी के साथ रिश्ता नहीं रहता। उनका रिश्ता किसके साथ रहता है, एक भगवान के साथ ही रहता है उनका रिश्ता, यानी वो नष्ट मुहा रहते। और फरिश्ते क्या रहते, हल्के रहते, लाइट रहते, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं कि उनके पाँव है धरती पर नहीं रहते, यानी देह रूपी है मिट्टी है उससे परे रहते हैं वो, और आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है, इसी कारण वो हल्के रहते तो उड़ते रहते। और तीसरी उसकी निशानी वो विश्व कल्याणकारी रहते, क्योंकि सभी की कल्याण हो जाए इस भावना से वो ये करते हैं। तो इस प्रकार वो फरिश्ता स्थिति रहेंगी। और लास्ट है वो फॉलो फादर करेंगे, ये समीप वाली आत्मा ही है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा को, यानी त्याग तपस्या और सेवा इसके कारण ब्रह्मा बाबा आगे बढ़े। तो ब्रह्मा बाबा ने किन किन प्रकार का त्याग किया है कि उनके जीवन में जो मांस आने उनका भी त्याग किया था, उनके पास जो धन था वो धन भी सब यज्ञ में लगाया था, लगाने के बाद में उसकी बुद्धि भी नहीं गई उस धन के पास। तो इस प्रकार उनने धन में भी त्यागी भावना थी उसकी, और सेवा भी इतने बड़े होते हुए भी उसने यज्ञ में सेवा ही बहुत की है, तो उसी कारण वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो समीप वाले आत्मे है वो इस प्रकार वो निशानियाँ है। तो इस प्रकार हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के निशानियाँ धारण करेंगे और बाप समान बनेंगे तो हम भी क्या हो सकते, समीप रतन बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
पे नजर एक तेरा संग हो।